जी, अब आप देखिए कि अगली चीज़ जो इस आयत में है वो है वला उमन्नियन्नहुम, और अलबत्ता इनको उम्मीदें दिलाऊंगा। ये दूसरा चैलेंज है शैतान का। और उमन्निया का जो लफ्ज़ है ये मीम नून या से है, मुना, और उमनिया कहते हैं झूठी उम्मीदों को। एक अच्छी उम्मीद होती है, इसको रिजा कहते हैं, और ये पसंदीदा है। पीछे हम पढ़ चुके हैं तरजुना मिन अल्लाह का लफ्ज़ आया था, और अल ईमान बैन अल खौफ व रिजा का लफ्ज़ भी आता है। तो झूठी उम्मीदें कौन सी होती हैं कि जिनके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन सिर्फ लंबी उम्मीदों में जीते जाना। ये हो जाए तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे तो वो कर लेंगे, और इस तरीके से लोग ज़िंदगी बसर कर देते हैं कि सिर्फ कल की उम्मीद में ही जीते रहते हैं। ऐसा होता है आज कितने लोगों की ज़िंदगी आरज़ुओं में गुजर जाती है, अगले आने वाले सालों के मंसूबों में इस तरह गुम हो जाते हैं कि बाज़ दफ़ा अपनी नमाज़ों को भी भूले होते हैं। तो यहाँ उमनिया से मुराद बातिल उम्मीदें हैं। ये कौन सी उम्मीदें होती हैं? मसलन प्रैक्टिकल कुछ सेंटेंसेस जो शैतान बुलवाता है और सुनवाता है। अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, कर लेंगे ना, चलो अभी देख लेंगे, अभी आज तो खैर करो, कल देखेंगे। दुनिया नक का सौदा है, आखिरत उधार है, और आखिरत किसने देखी है और उधार किसने चुकाया है। इस किस्म की बातें जो हैं ये झूठी उम्मीदों की बातें हैं। ख्याली जन्नतों में रहना, शेख चिल्ली वाला तर्ज़ अमल, ख्याली महल्लात तामीर करवाता है और उसमें दाखिल करवाता है। तो याद रखिए, जो सिर्फ ख्यालात में रहे और अमल ना करे, क्या फिर वो अहमकों की जन्नत में नहीं रह रहा? कोई ऐसा काम लोगों से करवा लेता है कि जिसके ज़रिए से वो हक का रास्ता छोड़कर, हकीकत के रास्ते से हटकर सिर्फ तमन्नाओं में जिए। इमाम राजी हैं, वो कहते हैं कि शैतान का सबसे मजबूत रास्ता क्या है? आरजुओं का दिलाना। वो एक शेर भी है ना कि जिंदगी मांग के लाए थे 4 दिन, दो उम्मीद में गुजर गए और क्या दो तमन्ना में गुजर गए। बचपन से देखा करें, बच्चे को पूछते हैं तुम बड़े होके क्या बनोगे, ये आरजू नहीं है? मैंने तो इस बच्चे के लिए बड़े ख्वाब देखे हुए हैं, इसकी तो शादी मैं वहां करूंगी, ख्वाब आरजू है। फिर इसी तरह तौबा की उम्मीद पर गुनाह करवाता है, ये भी झूठी आरजू है। आज कर लो, कल देख लेंगे जो होगा। देखिए कि आरजू से दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक हिरस और एक अमल। अमल आइन से नहीं, अलिफ से। अमल कहते हैं आरजू को, यानी लंबी आरजुओं से इंसान जीता है। हिरस से इंसान की दुनिया मुतासिर होती है, और अमल यानी उमनिया ही के मानों में ले लें, इससे इंसान का दीन मुतासिर होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदम मिट्टी से बना है, इसके पास सोने की दो वादियां भी होंगी तो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। ये आरजुएं हैं ना, और ये मिट्टी से बने, इसका पेट कब्र की मिट्टी भरेगी। जो लोगों दफन के वक्त पे पास होते हैं उनको पता है कि जब लकड़ी के तख्ते हटाए जाते हैं ना, तो थोड़ी सी मिट्टी साइडों से गिर के मुर्दे के मुंह पे गिरती है, कपड़ों पे गिरती है। उसकी तरफ इशारा है कि जीते जीते तो इसका पेट नहीं भरेगा, और मिट्टी के अंदर जाके इसका कुछ बनेगा। एक से खूब से खूब तर की तलाश, ये है उमनिया। स्टेटस कॉन्शियस, स्टैंडर्ड, अब इस बच्चे का क्या होगा, अब उसका क्या होगा, अच्छा इससे आगे, अब इससे आगे, इससे आगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्लमंद वो है जो आखिरत के लिए उम्मीदें लगाएं। सिर्फ हम बैठ के अपना जायज़ा लेके देखें कि क्या हमारी सारी उम्मीदें इस दुनिया से तो नहीं लगी हुई, और क्या आखिरत के लिए भी कुछ रखा हुआ है कि नहीं। आपने फरमाया कि हलाक हुआ दिरहमो दीनार का बंदा, यानी जिसका हर वक्त मसला क्या है? पैसा पैसा। रेट्स गिरते हैं और चढ़ते हैं तो साथ उसका ब्लड प्रेशर भी गिरता और चढ़ता है। वो इसलिए जी रहा है कि वो ये देखे कि जो पैसा उसने कहीं लगाया हुआ है उसमें कितना नफ़ा हो गया, और अगर डूबा तो साथ ही हॉस्पिटल में पहुंच गए। इस तरह की तमन्नाएं लाता है कि दुनिया को इतना हसीन और जमील करवा के सामने ले आता है कि जिसकी वजह से इंसान आखिरत को बिल्कुल पीछे डाल देता है। और इसके बारे में एक रिवायत में आता है, यानी तफसीर में आता है कि हर उस शख्स को इसकी दावत दूंगा जिसकी तरफ उसकी तबीयत माइल होती होगी, और इस तरह इसे अल्लाह की फरमा बरदारी से रोक दूंगा। तो खुलासा क्या है कि तमन्नाएं बुरी नहीं है अगर दायरे में हो, कोशिश करना भी बुरा नहीं है, दुनिया के लिए बच्चों के लिए प्लानिंग करना भी बुरा नहीं है, लेकिन जब ये तमन्नाएं इतनी लंबी हो जाएं कि फिर उसकी मौत आ जाए। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने, ज़मीन पे आप बैठे हुए थे, एक चौकटा खेंचा। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो मैं आपके साथ करके दिखाती हूँ, और इसको आप भी अपने नोट्स में बनाइए, एक तो सुन्नत समझते हुए भी, और दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा तस्वीर के साथ बंदे को वो चीज़ दिखने लगती है जो ऐसे नहीं दिखती। तो सहाबा किराम बैठे थे और ये किसी सहाबी के दफन के मौके पे कब्रिस्तान में थे, और आपका अमल देखिए कि आप कितने खूबसूरत तरीके से वक्त पे तबलीग करते थे। तो सब लोग जैसे कफन दफन के बाद फारिग हुए और दिल भी बोझल होता है ना, तो आप ज़मीन पे बैठे, आपने एक तिनका लिया और उसके बाद ज़मीन पे इस तरह से एक रेक्टेंगुलर चौकटा बनाया, फिर इसके बीच में आपने एक नुक्ता लगाया, फिर यहाँ सीधा एक खत खींचा, ये दीवार इसको यूँ खींच दिया, और इसके बाद यहाँ छोटी बड़ी लाइनें रखी और यूँ इधर बाहर कर दी, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें इस तरह। आपने फरमाया कि ये नुक्ता इंसान है, ये चौकटा जो है ना, जो इसकी बाउंड्री है, ये इसकी जिंदगी का वक्त है, और ये देखिए ये सीधा खत जो खींचा ना, ये यहाँ टच किया, ये इसकी मौत है, यानी जब मौत आती है तो ज़िंदगी ख़त्म, और ये जितनी बाहर दीवारें हैं ना, ये आपने फरमाया कि इसकी आरजुएं हैं। सच है ना, यानी इंसान मर जाता है लेकिन उसकी आरजुएं नहीं ख़त्म होती। वो कहते हैं ना, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। आप सोचें, हर ख्वाहिश पूरी होती है ना तो उसके पीछे से एक और ख्वाहिश जन्म लेती है। पिछले कई सालों से आप अपना घर सेट कर रहे हैं, क्या आज मुतमईन है? इतने में कि आपका फर्नीचर अपडेट हो गया, आपके पर्दे पुराने हो गए, पर्दे ठीक किए तो अब घर की क्रॉकरी में से कुछ चीज़ें टूट गई। उसको सेट करते करते बंदा दुनिया से चला जाता है लेकिन उसकी आरजुएं नहीं पूरी होती। असल में ये सिर्फ आज की दुनिया की तमन्नाओं में जीना, ये है वला उमन्नियन्नहुम। तीसरा स्टेप यानी साइत में, और चौथा है बेसिकली टोटल, वो क्या है, वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्न आज़ान अलअनाम, और इनको सिखाऊंगा कि चीरेंगे ये जानवरों के कान। ये क्या काम था? यहाँ लफ्ज़ आमरन्ना में तो अमर ही है, हुक्म से जो लफ्ज़ है, और फलयुबत्तिकुन्ना का लफ्ज़ जो है ना, ये बतका से है, बा ता काफ। बतका कहते हैं खूब अच्छी तरह काटना, बतका, और बतकतुन कहते हैं किसी चीज़ का कटा हुआ हिस्सा जो लटक रहा हो। अरब लोग जानवर जब पैदा होता था तो उसका कान इस तरह से चीर देते थे कि पूरा कान कट जाता था लेकिन ऊपर से एक हल्का सा बस सिरा जुड़ा रहता था। वो जैसे आप समझे ना कि मुड़ा हुआ कान अगर लटक रहा है, उसको बतकतुन कहते थे। ये क्यों करते थे? जानवरों के नाम पे छोड़ते थे। कोई जानवर पैदा हुआ, कहते थे ये हमारी देवियों की वजह से पैदा हुआ है। जैसे आज भी लोग कब्रों पर छोड़ आते हैं ऐसे इंसानों को, जानवरों को, बल्कि वो तो सिर्फ जानवरों का करते थे, आज तो इंसानों का भी करते हैं लोग। बच्चे जब उनके ख्याल में नऊज़ु बिल्लाह उनके पीरों और बुज़ुर्गों की देन से होते हैं, तो माएँ खुद अपने बच्चों को जो कई कई साल के बाद पैदा हुए होते हैं उनको पकड़ के दौले शाह जो हैं उनके जाके मज़ार पे छोड़ आती हैं कि हमने मन्नत मानी थी कि अल्लाह तू बेटा दे तो हम इनके मज़ार पे जाके इसको छोड़ेंगे। और वहाँ क्या आपको होता है कि जो उनके मुरीद हैं वो बच्चों को लोहे की छोटी छोटी टोपियाँ पहना देते हैं। अब होता क्या है कि बच्चा बढ़ता है लेकिन सर नहीं बढ़ता, और उसका सारे एक लंबी सी चीज़ की तरह बन जाता है, अकल छोटी होती, फिर वो दीवानों वाली हरकतें करते हैं। दौले शाही के चूहे आपने नाम सुना होगा, सड़कों पे किनारों में और भीख मांगते हुए दिखते हैं। ये आपको पता है किस चीज़ के होते हैं? ये उन जाहिल माओं की मन्नतों का शिकार होते हैं कि जिनका नौज़बिल्ला ख्याल ये होता है कि अल्लाह ने तो बच्चा देना नहीं था, ये दौले शाह की वजह से मिला, तो चलो मैं अब इनको इन्हीं की भेंट पर चढ़ा दूँ। ये है फलयुबत्तिकुन्ना आज़ान अलानाम, ये जानवरों के कान काट देंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इसकी बात कर दी। आज भी आप देखिए कि इसकी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमारे यहाँ मिलती हैं। मसलन बाज़ मज़हब ऐसे हैं जिसमें नाक का जो कील है वो सुहाग की अलामत है। हिंदुइज़्म में शादीशुदा लड़की की अलामत क्या है कि वो नाक में कील डालती है। इसी तरह अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं तो उसमें जब शादी होती है ना तो बीवी का नाक जो होता है, उसके बीवी का नाम जो उसके माथे पर टैटूज के तौर पे लिख देते हैं कि बस एक किस्म की एक निशानी हो गई है। फिर इसी तरह जिस ऊंट से 10 बच्चे पैदा हो जाते थे ना, उसको हाम कहते थे और उसको फिर खुला छोड़ देते थे, कहते थे अब ये हमारे देवताओं के नाम पर है और इसको जिधर जाने दो करेंगे, कुछ भी इसको रोक नहीं सकते। अल्लाह ताला ने दौरे जाहिलियत की इन सारी निशानियों का तस्करा किया कि ये शैतानी काम है। अल्लाह ताला हमें कभी भी ऐसे काम करने का हुक्म नहीं देते کہ جس سے انسان انسانیت کے درجے سے ہٹے. بعض لوگ آج کے دور میں ایک اور بھی کام کرتے دیکھے گئے, اور وہ کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے سارے سر کے بال کٹواتے رہتے ہیں لیکن ایک لٹ چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ بچہ کچھ سال کا جب ہو جاتا ہے نا تو پھر فل جس قبر کی انہوں نے منت مانی ہوتی ہے وہاں جا کے پھر بال کاٹتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ہماری منت کی لٹ تھی. مجھے خود کسی ایسی عورت سے بات کرنے کا موقع ملا, کہتی ہیں کہ بچہ پیدا جب نہیں ہوتا تھا تو کہا, ذرا آپ سوچیے گزر شیطان کس طریقے سے آرزویں دلاتا ہے کہ نعوذ باللہ شاید میرے بچے کا نصیب اس دنیا میں نہیں ہے کھانے کا پینے کا میرے گھر سے, تو مائیں منت کیا مان لیتی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا تو 7 سال کا ہونے تک اس کو اپنے گھر سے نہ کھلاؤں گی نہ پہناؤں گی. اور وہ کہتی ہیں کہ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو گلی محلے کے لوگوں سے کپڑے مانگے, 7 سال تک ان کے بچے نے مانگے ہوئے کپڑے پہنے اور دوسروں کے گھر کا آیا ہوا کھانا کھایا. پیچھے سوچ کے نعوذ باللہ کہ اللہ کی رحمت کے خزانے کم ہیں, مجھے نہیں دے سکتا تو دوسروں کا نصیب کھائے گا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جاہلیت ہے, اور شیطان اس کو مختلف ناموں سے ہر دور میں کراتا رہا. فرمایا والا آمرنہم فلیبتکن آذان الانام, اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ سورۃ انعام میں ہم پڑھیں گے. اگلا اس کا امر کیا ہے؟ والا آمرنہم, اور البتہ ضرور ان کو حکم دوں گا. دیکھیے لفظ آمرنہم پہ دیکھیے کتنی شدت ہے نا, ایک ہوتا ہے امرا اور یہاں نون پہ جو شد ہے اس میں بہت شدت ہے. وہ کیا ہے ادھر؟ فلیغیرن خلق اللہ, اور یہ تبدیلی کر دیں گے اللہ کی تخلیق میں. فلیغیرن میں غیرہ ہے, غین یارہ غیر جس طرح ہوتا ہے نا, تبدیلی کرنا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس پہ مفسرین نے بہت زیادہ بات کی. سمپل سا اس کا معنی تو کیا ہے کہ جو اللہ کی تخلیق ہوگی نا اس کو تبدیل کر دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو طریقے جو جس کو جو کام دیا ہے اس کی بجائے دوسرا کام کروا دیں گے. مثلا عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنا دینا, پھر اسی طرح آپ دیکھیے فطرت کے اصولوں سے ہٹا دینا. اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے رکھا تھا باہر کا کام, کمانے کا کام, گھر کی ذمہ داریاں, جو بھی گھر والوں کی ضروریات ہے. عورت کو رکھا گھر کے لیے, بچوں کی پرورش کے لیے. شیطان نے کیا کیا؟ عورت کو لا کے باہر کھڑا کر دیا. یہ ہے فطرت میں تبدیلی کی ایک قسم. پوائنٹس میں لیتے جائیں تو آپ کو 8-10 قسمیں ملیں گی, جس کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں انسانیت کس طرح شیطان کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی ہے. اسی طرح اس کی ایک اور تفسیر جو ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جانوروں مردوں کا خسی کر دینا, یعنی مردوں کے اندر سے مردانگی کی حس ختم ہو جانا. ایک خاص قسم کا آپریٹ کرواتے ہیں کچھ لوگ. پہلے دور میں تو یہ بہت عام تھا کہ یہ بھی ایک قسم کی منت تھی کہ مرد کے اندر سے وہ جراثیم ختم کروا دیے جاتے تھے جو شادی کے لیے قابل ہوتے ہیں. اسی طرح راہب بن جانا, ننس بن جانا. شادی انسان کی ضرورت ہے, اس کے جسم کے تقاضے ہیں, لیکن ان کو دبانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ اس چیز کے اندر الگ ہو جائیں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ فطرت کا ایک اصول کیا ہے کہ جو بیج اگتا ہے نا درخت میں پھل بناتا ہے پھر وہ اپنا بیج دے کے جاتا ہے. یہ فطرت کا ایک سمپل سا اصول ہے. ہر سال جب فصل آتی ہے تو اس کے بعد وہی بیج اگلے سال کی کا بیج بن چکے ہوتے ہیں. لیکن آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ ریسرچز کے ذریعے سے اور کچھ بڑی طاقتوں کے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے بیج بس ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے. کسان کو ہر سال نیا بیج خریدنا پڑتا ہے. آج جتنے ہمیں پھول زیادہ دکھتے ہیں, پھل زیادہ دکھتے ہیں, پہلے تھوڑی چیزیں تھیں اب زیادہ, اس کی وجہ یہ کہ آرٹیفیشلی پروڈیوس کرتے ہیں اور جان کے ریسرچز کے ذریعے سے اس طرح سے ان کی کیمیکل سیٹ کرتے ہیں کہ ایک بیج بس ایک ہی دفعہ ہو. کیوں؟ تاکہ لوگ ہم سے خریدتے رہیں. اپنی منڈیوں کو بھرنے کے لیے, اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے جو فطرت نے ایک نیچرل سسٹم دیا ہوا تھا بیجوں کے اگ کے, اور غریب بھی کما لے گا نا, دوبارہ اگلے سال کا بیج اس کے گھر میں آئے گا, اس چیز کو انہوں نے چینج کر دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جانوروں کے اندر بھی اپنی نسل بڑھانے کا شوق ہے. ہر جانور کی نسل بڑھتی ہے, لیکن فیملی پلاننگ کے جتنے ذرائع کہ جس میں اولاد سے اپنے آپ کو محروم کر لیا جائے. ایک تو یہ نا کہ بندہ تھوڑے سے پریکاشن لے لیتا ہے اپنی مرضی سے, حالانکہ ہونا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے, لیکن ایک یہ کہ عورتیں بالکل ایسے اپنے آپ کو آپریٹ کروا لے کہ مجھے بچے پیدا نہیں کرنے, یہ بھی ہے خلق اللہ کی تبدیلی. کیونکہ عورت کی فطرت, عورت کی نیچر میں بچے کی پیدائش ہے. اسی طرح اگر کسی اور طریقے سے اگر مرد اپنے آپ کو ایسا کر لے, یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی طریقے زندگی گزارنے کے دیے تھے شیطان نے اس کو پیچھے رکھا. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ایک اور بہت کامن ایگزامپل جس سے خوف آتا ہے آنے والی نسلوں کا سوچ کے, وہ کیا ہے کہ اب شادی تو ہو جاتی ہے, 2 سال 4 سال بچہ کدھر ہے, نہیں ابھی نہیں چاہیے, ابھی ہم خود انجوائے کر رہے ہیں. यानी शादी को सिर्फ इंजॉयमेंट का नाम रखा, अपनी आज़ादी और अपनी कशिश को कायम रखने के लिए बच्चों को पैदा नहीं किया जा रहा। और पाँच पाँच साल, छः छः साल हो जाते हैं लोगों की शादियाँ हुए हुए। एक तो अल्लाह की तरफ से ना हो वो तो और बात है, लेकिन आज के दौर में पहले तो शादी से ही हटे, ये भी फितरत से खिलाफ है कि शादी ना करना। यंगस्टर्स हैं वो बगैर शादी के सिर्फ आपस में बैठना और मिलना और रहना और आज़ादी के नाम पे कि भी हम शादी नहीं करते, ये भी खल्क अल्लाह की तब्दीली है। और इस सोसाइटी में तो लोगों को बड़ी हैरत होती है जब किसी की शादी 8-10 साल एक ही शख्स से रहे, या 10 साल हो जाए और शादी ना टूटे, उसमें बहुत ही हैरत की बात होती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि खल्क में तब्दीली, बच्चे के लिए माँ की गोद थी, बच्चा माँ की गोद में सिक्योर है, उस गोद को महरूम, बच्चे को माँ की गोद से महरूम किया और कहीं फॉस्टर मदर्स के हवाले कर दिया और कहीं बेबी सिटर्स के हवाले कर दिया। आज का जितना सेटअप आपको दिखेगा ना, उसमें अक्सरियत जो है वो फल युगैरुन खल्क अल्लाह की है। वो मोहब्बतें नहीं, बचपन में बच्चे को मोहब्बत मिलती थी, वही मोहब्बत पलट के बुढ़ापे में माँ बाप को वापस मिलती थी। आज जब बचपन में हमने उनको बेबी सिटर्स दे दी, उन्होंने हमें बड़े होके होम्स दे दिए। आज बूढ़ों को ओल्ड होम्स में डलवाना, क्या ये खल की तब्दीली नहीं है? अल्लाह ताला ने कैसे रिश्तों की मोहब्बत में बच्चे को दुनिया में भेजा था, माँ, नानी, खाला, फूफी, दादा। आप बताइए, वो बच्चे जो सिर्फ लस्ट की बुनियाद पर दुनिया में आ जाते हैं, उनके रिश्ते कहाँ जाते हैं? अल्लाह ताला ने एक बड़ा प्यारा सिस्टम दिया था, इंसान और जानवर का फ़र्क था, इंसानों ने उसी के अंदर तब्दीलियाँ करनी शुरू कर दी। फिर आपको पता है कैसी भी आवाज़ें उठनी लगी कि अब भाई बहनों का निकाह कोई हर्ज नहीं उसमें। यानी एक ऐसा मैगज़ीन है कि जिस पर तस्वीर छपी उस भाई और बहन की कि जिन्होंने ना सिर्फ ये कि शादी की बल्कि उनका बच्चा भी है, और उनका इंटरव्यू है उसमें कि हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और अब ये आवाज़ें आ रही हैं, मैंने आपको एक जगह पढ़ के भी सुनाई थी पीछे ये कोटेशन, कि कितना बेवकूफ़ है इंसान कि वो लड़की जो उसके घर में पली भड़ी, जो उसके मिजाज को अच्छी तरह जानती है, जो उसकी बहन की सूरत में, उसको छोड़ के बाहर की एक अजनबी लड़की से शादी कर लेता है जिसको इसके मिजाज का पता नहीं। लिहाजा बहन से शादी करना ज़्यादा कामयाबी की अलामत है। उस लड़के की भी आपने बात सुनी होगी जिसने अपनी सगी माँ से निकाह किया और वो कहता है कि हम अपने निकाह के तौर पर खुश हैं। उस बच्चे की भी सुनी होगी जिसने अपनी नानी से शादी की। ये जो आजमाने और टेस्ट और इस तरह की चीज़ों के अंदर में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये सारी की सारी शैतान के नामों पे हैं। 1987 की एक रिपोर्ट है, न्यूज़वीक अखबार में छपी थी, अमेरिका में वियाना स्टेट में 35,000 बच्चों के माँ बाप का नाम भी मालूम नहीं, यानी बच्चों को पैदा किया जाना और छोड़ दिया जाना। और आप सोचिए कि गालिबन, मुझे इस वक्त सही फिगर याद नहीं है, इस वक्त भी ये बड़ी बड़ी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें पैदा होने वालों में गालिबन हर तीसरा बच्चा जो है वो नाजायज़ बच्चा है, उसको बाप का नहीं पता, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स। इस वक्त यूएसए का जो प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से अब उनका सोशल सिस्टम टूट रहा है, वो सिंगल पेरेंट्स होना है। माएँ अकेली हैं, पहले अपने बच्चे पालती थी, अब बेटियों के भी नाजायज़ बच्चों को पालती हैं। कई कई घराने ऐसे हैं कि जिनमें मर्द नाम का कोई तस्वुर भी नहीं है, भंवरों की तरह आए, खुशबू चूसी, रंग चूसा और चले गए, और जिम्मेदारियां औरतों पे आ गई। ये सारी फितरत की चीज़ें हैं। फिर इसी के अंदर और इसकी बहुत सारी किस्में हैं, मसलन जिन्स तब्दील करवा देना, औरत का मर्द बनना, मर्द का औरत बनना, बहरूप देहधार के धोखा देने की कोशिश करना, औरतों को भांज बनाना। अब इसके साथ ही कुछ चीज़ें फिर इसमें आती हैं, वो आती हैं जैसे मेकअप के नाम पर साख्त बदल देना, जिसको आप प्लास्टिक सर्जरी कह सकते हैं, नाक फीचर्स बदल गए। इस दौर का जो लेटेस्ट फैशन है वो चेहरे पे कुछ लगाना नहीं है, बल्कि वो ये है कि नाक ही बदलो, ये नाक तुम्हारी लंबी है उसको घिसाओ। एक ऐसा वक्त गुजरा था कि जैपनीज नोज का रिवाज हुआ था, शायद आपको तो पता भी नहीं चलता होगा, अच्छे भले लोगों ने अपनी नाक की हड्डियों को घिसवा के उसको चपटा करवाया, फैशन है। एक दौर था लोग लंबी नाक को पसंद करते थे, अब छोटी आंखों का रिवाज आएगा तो लोग कट लगवा के आंखों को छोटा करवाएंगे, पलकें कटने का रिवाज आएगा तो लोग पलकें काटेंगे, पलकों पे मिस्कारा लगा लिया, काला लगा लिया, अब आप सबज देखेंगे, नीला देखेंगे, पर्पल देखेंगे। बाल काले थे, लोगों ने पहले काले नहीं किए, भूरे कर लिए, नेचर के करीब ही रहे ना, क्योंकि लोगों के काले भी बाल होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, सुर्ख भी थोड़े बहुत होते हैं, अब आपको ग्रीन दिखेंगे, येलो दिखेंगे, ब्लू, ये खलकी तब्दीली है। चले पहले मेकअप के अंदर भी अगर कुछ चेंजेस थी, नेल पॉलिश लगाई, सुर्ख नहीं लगाई, पिंक लगा ली, पिंक नहीं लगाई, मैरून लगाई, नेचर के साथ है ना आपकी स्किन से मैच करता है, अब आप इसको ग्रीन और येलो और पिंक में देख लें। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसी के अंदर फिर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप कहेंगे कि क्या नहीं कर सकते क्या नहीं, तो आप एक छोटा सा असूल याद रख लें, हर वो चीज़ जिसके करने से पता चले कि आपने कुछ किया हुआ है, वो अलग चीज़ है, लेकिन दूसरी वो चीज़ है कि जिससे असल में नकल का धोखा हो वो जायज़ नहीं है। मसलन आप देखिए कि हम मेकअप करते हैं, तो क्या फिर ये भी खल्क की तब्दीली है? आप इसको इस तरह समझ लें कि जब कोई मेकअप करता है तो क्या दूसरों को पता चलता है उसने किया हुआ कि नहीं? साफ पता चलता है, आपने चेहरे पर रंग लगाया है, आपने जो भी किया आपको पता चल रहा है, तो इसकी तो इजाज़त है। अल्लाह के नबी ने कहा कि औरतों के लिए रंग लगाना जायज़ है जिसकी खुशबू दबी हो, और मर्दों के लिए खुशबू लगाना जायज़ है जिस पर रंग दबा हो। लेकिन आज आप देखिए कि जब मीडिया पे आते हैं तो मर्दों ने मेकअप किया होता है। अब मर्द किसी को आप लंबे बालों में देखें, चुटिया डाली हुई है, ये खल्की तब्दीली है, ये औरतों की बात है। इसी तरह औरतों को आप बिल्कुल बॉयकट में देखें कि उसके और मर्द में कोई फ़र्क नहीं लग रहा, ये खल्की तब्दीली है। फिर इसी तरह आप देखिए कि फैशन के नाम पर सिर्फ लेंसेस लगाना तब्दीली है, अब दांत है उसके अंदर ब्रसल्स लगवाए जाते हैं। अगर तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर मजबूरी में है, देखिए इस्लाम ने एक बड़ी बारीक सी लाइन रखी हुई है कि हर वो चीज़ अपनी स्किन में, प्लास्टिक सर्जरी है, खुदा न खास एक्सीडेंट हो गया, जल गया, कोई उज़ टूट गया, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी सोके, लेकिन जब सिर्फ हुसन के नाम पे और जब सिर्फ यंग लुकिंग के लिए आप अपनी थोड़े सालों के बाद स्किन को खींच खिंचवा के आप उसको स्ट्रेच आउट करवा लें, या आप थोड़े अरसे के बाद आप अपने फीचर्स को तब्दील कर लें, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि अपने आप को ही बुत बना के पूछते रहो। जो लोग इस तरह की खूबसूरती के रसिया होते हैं ना, फिर उनको आप देखें कि वक्त नहीं मिलता, वो चार चार छः छः घंटे ब्यूटी पार्लर्स में मशीनों में बैठे रहेंगे, लेकिन वो कुरान सुनने के लिए एक डेढ़ घंटे से ज़ायद नहीं बैठ सकते। नतीजा क्या होता है कि वो अपने आप को सजाते हैं। हर चीज़ की एक हद है, एक लिमिट है, अल्लाह ताला ने उसका इजाज़त दी है, वो काम करेंगे तो फ़ायदा होगा, अगर उससे थोड़ी तरफ जाएंगे तो ख़राबी होगी। फिर इसी तरह देखिए कि आज के दौर में ज़ुबान पे बाली पहनने का आपने शायद देखा होगा, भवों के अंदर पूरे बाल इधर बालियाँ पहनी होती हैं, भवों को मूंड देना, इसी रिवायत के अंदर फिर प्लकिंग की बात आती है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो के पास एक औरत आई और उसने पूछा कि प्लकिंग का तस्करा कहीं कुरान में है? कहा है। चले गए ढूंढ, चली गई, कुछ दिन के बाद वापस आई, कहा मुझे तो पूरे कुरान में ये बात नहीं मिली। और वो हदीस भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आपकी इस बुक में भी है इंशाल्लाह ताला। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है बाल नोचने वाली और नोचवाने वाली, यानी नोचने से मुराद प्लक करना, और जिसने की जिसम को गूदने और गुदवाने वाली, गूदना कहते हैं टैटूज बनाने को, यानी परमानेंटली अपनी स्किन के अंदर कोई रंग भरवाना, और दांतों को कुशादा करवाने वालियों पर। अरबों का रिवाज था कि दांतों के बीच में गैप को पसंद करते थे, तो जैसे आप दो दांत हैं ना, तो इनकी साइडों को घिसवा के तो सुराख कराते थे, इसका तस्करा है। अब ये हदीस एक मौके पे इब्ने मसूद ने एक औरत के सामने रखी, उसने कहा क्या ये कुरान का हुक्म है? कहा हाँ कुरान में है। चली गई ढूंढ ढांड के आ गई, कहने लगी मुझे तो पूरे कुरान में ये बात कहीं नहीं मिली कि अल्लाह ने प्लकिंग पे और इन तीन चार चीज़ों पर लानत की है। तो कहा अच्छा, कुरान खोला और सूरह हशर की वो आयत खोल के दिखा दी कि वमा आता कुम रसूल फ़ुज़ू हो वमा नहा कुमन खुफ़ंत हो, कि जो हुक्म तुम्हें रसूल दें उसको ले लो, और जिससे रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। कहा ये हुक्म पढ़ा था? कहा ये तो पढ़ा था। कहा तो फिर ये अल्लाह के नबी की हदीस में ये बात आती है। कहने लगी मुझे कैसे रोकते हो, तुम्हारी तो अपनी बीवी प्लकिंग करती है। कहा अच्छा, जाओ देख के आओ, मैं इधर बैठा हूँ, मेरे घर जाओ और मेरी बीवी को देख के आओ। ये औरत गई, उनकी बीवी को मिली, करीब से देखा, बस लोगों को फील नहीं होता दूर से, ऐसे लगता है कि करते हैं प्लकिंग। जब वापस आई कह रही नहीं मुझे गलत फहमी हुई थी, वो नहीं करती। तो उस वक्त हज़रत इब्ने मसूद ने कहा कि अगर मेरी बीवी ये काम करती तो वो मेरे निकाह में ना रहती। अब ये बात जो है इसके अंदर आ जाती है, और आप फिर इसकी दलील पूछें क्या करें कैसा करें। मैं तो सिर्फ ये समझ लेती हूँ कि जिसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाता है ना, फिर वो दलाइल नहीं मांगता। कह दिया आप इसके साइंटिफिक दलाइल लें, बीसियों मिलेंगे। आज डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो औरतें प्लकिंग करती हैं उनकी आंखों के ऊपर के जो पतली सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं वो वीक हो जाती हैं। आप देखें कि कुछ उम्र के बाद स्किन जहाँ से लटक जाती है बाल आंखों के ऊपर जाने लगता है। इतने बड़े रिस्क में हम पड़ते हैं और कुछ भी नहीं है, चेहरे पर जो इससे करख्तगी आती है, कभी आपने फील किया? यंग बच्ची जो मासूमियत की एक तस्वीर होती है, एक दिन आती है तो बड़ी मासूम लगती है, अगले दिन आती है तो ऐसे लगता है इसको क्या हुआ है। गौर करें तो वो प्लकिंग की, 5-6 साल औरत बड़ी लगती है अपनी उम्र से। फिर इसके ये एक बुरा रिवाज भी था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जो खासतौर पर प्रोस्टिट्यूशन करने वाली जो औरतें होती थी वो इस तरह के काम करती थी। तो बहरहाल इस वक्त हमारा ये टॉपिक नहीं है, सिर्फ इस चीज़ पर रहिए कि असल बात यह है कि इंसान ज़िंदगी में ख़ुद को पूजने नहीं आया। क्या खूबसूरती सब कुछ है? क्या हम अल्लाह के लिए थोड़ा सा भी नहीं बर्दाश्त कर सकते? हम एक बाल की कुर्बानी नहीं दे सकते तो हमने जान कहाँ कुर्बान करनी है? हम तो नाखून नहीं काट सकते, ये नाहनों को जो लंबा बढ़ा लेते हैं 40 दिन से ऊपर का जो मसला है, तो आप देखिए कि ये किसकी किसकी रिजेंबलेंस है, इंसानों के तो लंबे नाहन नहीं होते। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ों को रखा। फिर इसकी और बहुत सारी किस्में हैं, मसलन आप देखिए कि यानी जैसे अल्लाह ताला ने कुछ जानवरों को वज़न उठाने के लिए रखा हुआ है, आजकल कोशिश की जा रही है कि गधी का दूध, गधा जो होता है उसकी फीमेल से दूध हासिल किया जाए। अल्लाह ने गधे और गधी को वज़न उठाने के लिए रखा, आप कहते नहीं इनसे भी हमें दूध लेना है। फिर आप देखिए कि गाय का दूध पीना था लेकिन लोग पेशाब पीते हैं, ये भी फितरत में तब्दीली है। फिर एक और तब्दीली जो हमारे इंटीरियर सिंध में अमूमन देखी जा रही है कि लड़कियों का कुरान के साथ निकाह कर देते हैं। जब बड़े घरों की दौलत होती है तो कहते हैं ये बाहर ना जाएं, तो पकड़ते हैं और कुरान के साथ शादी करते हैं। पूरा एक आर्टिकल मेरे पास आया हुआ था एक मौके पर कि जिसमें एक लड़की जो रो रही है, आप सोचिए एक जवान लड़की है वो कुरान से शादी करके करेगी क्या, मतलब ये कि तुम रहो इस कुरान की खिदमत में रहो और तुम्हारी जो जायदाद है वो बाहर ना जाए। फिर इस तरह औरत का औरत से ताल्लुक क्या है, ये तब्दीली है ना। अल्लाह ने औरत और मर्द और मर्द और औरत में कशिश रखी, कपल्स बनाए थे, लेकिन वही ख्वाहिश जो है वो गलत तरीक़ों से पूरी करने की कोशिश की जाती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अपने आप को हम शैतान के हथकंडों से महफूज रखें। अल्लाह ताला ने इन बातों का तذکرہ किया, फरमाया वमई यत्तखिज़िश शैतान वलीयम, और जो कि शैतान को दोस्त बनाएगा मिन दूनिल्लाही अल्लाह को छोड़कर, फ़कद खसिर खुसरान मुबीना, तो बेशक उसने नुकसान उठाया बहुत बड़ा नुकसान। इस आखिरी हिस्से को अगर हाईलाइट कर लें तो इन सारे कामों की जो असल है वो हमारे सामने आ जाएगी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा शख्स जो है वो शैतान के धोखे में आ गया और इतना ज़्यादा भटक गया कि उसके भटकने में कोई शक ही नहीं। फिर मज़ीद ज़ोर दिया गया याइदुहुम, वो वादे देते हैं उनको और क्या करते हैं वयुमन्नीहिम, और उनको तमन्नाएँ दिलाते हैं, उनको आरजुएँ दिलाता है। हालांकि वमा याइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, और नहीं उनसे वादे करता शैतान मगर सारे ही सारे फरेब के। उलाइका मा वाहुम जहन्नम, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। वला यजिदून अनहा महीसा, और वो वहाँ से भागने की कोई जगह न पाएंगे। अल्लाह ताला ने बताया कि देखो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें जो कहता हूँ वो सही कहता हूँ, दोस्त और दुश्मन की पहचान बता रहा हूँ। शैतान के धोखे तो सारे के सारे झूठे हैं, वो तो झूठे वादे करता है। सूरत इब्राहिम में हम पढ़ेंगे कल क़यामत के दिन जब सारे मामलात हो जाएंगे तो उस वक़्त भी शैतान इस बात का इकरार करेगा कि दुनिया में मैंने भी तुमसे वादे किए थे लेकिन मैंने मजबूर तो नहीं किया था। वला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे मलामत क्यों करते हो, तुम अपने आप को मलामत कर लो। एक वादा अल्लाह करता था और एक वादा मैंने किया, और अल्लाह के वादे जो हैं वो सारे सच्चे हैं, मेरे वादे जो थे वो झूठे थे। तो आज जो लोग अपने आप को शैतान के हथकंडों में लाकर सिर्फ खुद को ही पूजने की कोशिशों में रहते हैं, कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितनी भटके हुए थे और कितने धोखे में थे। गुरूर का लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल हुआ है, फरेब गुरूर गर्रा धोखे को कहते हैं, यदि आज के दौर में इस बातों को आम कर दिया, जितना झूठ बोलोगे देखना उतने कामयाब हो। रिश्वत ले लो फिर कुछ पैसे हज पे कर लगा देना फ़ायदा होगा, हराम बिजनेस हो कुछ पैसे मस्जिदों में लगा देना। इस तरह के दो रंगे मुसलमान जो नज़र आते हैं उसकी वजूहात जो हैं वो अल्लाह ताला ने इस आयत में बता दी कि असल में शैतान इंसान की जन्नत का दुश्मन है और उसे इस किस्म के काम करवाता है। आप और तो और देखें, आपको पता है कि आज बात करते हुए भी हया आती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हम फितरत से दूर होते हैं कि बस लोगों ने यानी ब्रेस्ट प्लांटिंग की कोशिशें की, जिस्म को कटवाती हैं और उसके अंदर रेत के गोले रखवाती हैं कि अपनी ब्रेस्ट को हाई करने के लिए, और वो इतना डेंजरस है कि अगर वो जिस्म में फट जाए तो इंसान मर सकता है। आज ये जो आपको 7 किस्म की बीमारियां और अजीबोगरीब कहानियां दिखती हैं और हॉस्पिटल्स का एक चक्कर लगा के देखें आपको लोग इस किस्म के दिखेंगे कि बेचारों पर रहम आता है, उसकी वजह यह है कि जब जवानी में बहुत सारे ऐसे काम कर लिए होते हैं कि जो फितरत से ख़िलाफ़ हैं, तो नतीजा यही निकलेगा। फिर खाने में पीने में देखिए, आम वक्त क्या था कि खूब खाओ खूब मेहनत करो, आज बच्चियां खाती नहीं हैं, मेहनत कहाँ से करेंगी। आप उनको देखें एक हवा चलती है वो बीमार हो जाती हैं, ये औरतें बच्चे कैसे पैदा करेंगी। कल कोई कह रहा है कि बच्चे को माँ डायपर बदलने जाती है तो मियाँ 60 टोकरी उठा के जाता है, मैंने कहा उस गरीब में ताकत ही नहीं है कि वो टोकरी पकड़े, वो कैसे जाएगी। देखिए यकीन करें ये बात बहुत लम्हा फिक्री है। मैं तो आप में से जो लोग इधर काम करते हैं अगर उनमें से किसी की सेहत इतनी कमज़ोर है, मैं कहती हूँ इसको सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसकी सेहत इस काबिल ही नहीं है कि आप इसके ऊपर ये काम करें। फितरत, खूब पसीना लो, खूब मेहनत करो, खूब काम करो, खाओ पियो, अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई है। और बच्चियाँ बड़े प्यार से कहती हैं हम खाते ही नहीं, हमारे घर में फ्रूट होता है हम खाते ही नहीं, हम चॉकलेट खाते हैं, ये खजूर की जगह चॉकलेट खाना ये क्या है। अब आप ये ना सोचें कि ये सब हराम है और ये गलत है, मैं सिर्फ एहसास दिलाना चाहती हूँ कि जो बंदा जितना फितरत में बच्चों को पालेगा, और देखिए इसमें बच्चियों का बच्चों का बिल्कुल कसूर नहीं, ये माँ है, आप बचपन से बच्चे को पैदा करें और उसके बाद से उसकी ज़िंदगी नेचुरल रखें। मैं आप एक और लफ्ज़ बोलूँगी जो माँ को बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँ कि वो चीज़ें सामने आती हैं इंसान के। आप देखिए कि बच्चे का, आप अपने आप को ही देख लें कि जब आपको टॉयलेट में जाने की ज़रूरत हो तो आपका क्या उस वक़्त दिल चाहता है कि आप टॉयलेट में जाए ना, और आप फारिग होकर अपने आप को साफ़ करके आ जाएँ। बचपन से बच्चे को जब आप एक पैम्पर में बंद कर देती हैं, नतीजा क्या होता है? पहली बात है कि उसके अंदर से वो हिस्सी ख़त्म हो गई, दूसरी बात है वो जानवर बन गया, जब दिल चाहा कर दिया। आप थोड़ा सा रोकते हैं ना, हर वक्त तो बंदा इस काबिल नहीं होता कि टॉयलेट में जाए, कभी एक घर में कई लोग होते हैं, इससे जिस्म में बर्दाश्त है। बचपन से बच्चे को शुरू में पैम्पर का आदि किया कि उसको पता ही नहीं चला कब करना है कब नहीं करना। आप जब 3-4 साल का हुआ पॉटी ट्रेन किया, आप कहते हैं जहाँ देखो वो कर देता है। इंसान में और जानवर में फ़र्क हो, 6 दिन के बच्चे को मैंने देखा है कि माँ जो है उसको जाके तो टॉयलेट में फारिग करा रही थी, और उस माँ ने कहा मैंने आज तक अपने बच्चे के बिस्तर को गीला नहीं कराया, मेरा बच्चा रो पड़ता है दूध ही नहीं पीता जब तक मैं उसको फारिग ना कराऊं, ना पैम्पर थे ना कुछ थे। कितने घरों में जो आज हम तो अल्लाह की नेमतों में पल रहे हैं ना, हमारे मुतवस्सत मुल्कों में कई घराने ऐसे जहाँ सास और बहू और मियाँ और बीवी की लड़ाई सिर्फ बच्चों के पैम्पर पर होती है क्योंकि महंगे हैं, और हकीकत में नहीं। एक पैम्पर जहाँ 20 से 30 रुपये का होगा, आप सोचें कि कौन अफोर्ड करेगा, और दिन में 3-4 पैम्पर बदल दिए तो घर में लड़ाई होती है, लिटरली लड़ाई होती है माँ अपनी इसके लिए अपनी सहूलत के लिए। तो सिंपल सीधे साधे पालें ये बच्चे, अगर आपकी आंखों की ठंडक बने कब, जो आप खाएं वो खाएं। आप कहते नहीं मैं तो खा लूंगी घर की दाल सब्जी, और बच्चे के लिए टिन का फूड आएगा जो 6 महीने पुराना है, एक्सपायरेशन डेट देख के तुम फौरन फेंक देंगे कि ये अब खराब हो गई है, लेकिन कभी सोचा कि एक चीज़ है जब फ्रेश बच्चे का बनाना या कोई चीज़ है उसको मैश करके खिला रहे हैं, और एक कई महीने पुरानी उसकी सिर्फ इसलिए कि ये बेबी फूड है, शुरू से उनको सिखा दिया कि तुम अलग हो। अब अगर वो आपके घर का रोटी सालन ना खाएं और वो कहें जी हमें तो अलग ही खाना है और ब्रेड चीज़ ही है, तो फिर कहाँ से आया। तो बहरहाल ये चीज़ें कोई इस तरह की हलाल और हराम की जद में नहीं आती, सिर्फ मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारे साथ जो होता है वो असल में हमारे ही हाथों का किया दर है। आज अगर हम सीधे सीधे चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला दूसरी तरह अल्लाह ताला आसानी करेगा। फिर इसमें यहूद का भी नाम आता है कि ये जो आरज़ुओं और तमन्नों की बात हुई, तो यहूद ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माना और ये सोच लिया कि हम हक पे हैं। आज भी कितने लोग हैं जो कुरान से दूर हो के समझते हैं कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा जन्नत वाले समझते हैं। यहूद का ये कहना कि हम जन्नत में जाएंगे कुछ भी कर लें हमें आग नहीं छुएगी, ये भी इनकी आरज़ुएँ थी। फिर इसी तरह मुसलमानों ने कई ऐसे मामलात रखे हुए, तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम अपने आप को इन चीज़ों पे सोचें गौर करें। आखिरी आयत में अल्लाह ताला फिर खुशखबरियाँ भी देता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो शैतान के हाथों में नहीं आएंगे, बल्कि वल्लज़ीना मनु वामिलुस्सालिहाती, और वो लोग जो ईमान लाएँ और अमल सालेह करें, सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, अन करीब हम उनको उन जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और खालिदीन फीहा अबदा, उसमें हमेशा हमेश रहने वाले हैं। वादल्लाहि हक्का, ये अल्लाह का वादा है सच्चा। वमन अस्तकु मिनल्लाहि कीला, और अल्लाह से ज़्यादा बात में कौन सच्चा होगा, किसकी बात अल्लाह से सच्ची होगी। तो यहाँ पे हमारा सबक पूरा होता है जिसका खुलासा क्या है कि दुश्मन बड़ा मजबूत है, वो बहुत कोशिश में है कि हमारा दीन ले ले, हमें फितरत से हटा दे, वो फितरत जिसके बारे में कुरान में आते हैं फितरतुल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, सूरह रोम में ये बात आती है कि वो फितरत जिस पे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, दीन इस्लाम, आहिस्ता आहिस्ता कहीं तरक्की के नाम पर कहीं मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इंसान को उस दीन से शैतान दूर करता जा रहा है, और एक वक्त तो ये भी आ गया कि लोगों ने अल्लाह ताला के वजूद का भी इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि शैतान की इन सारी चालबाजियों से हमें महफूज रखे, जो बात हमें समझ आ जाए उसके ऊपर हम कोशिश करना शुरू कर दें, जो बात अभी समझ नहीं आती जिस पे दिल नहीं ठुकता तो उसके लिए दुआ करते जाएं, अल्लाह से तौफीक मांगें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके लिए हमारे लिए आसानी करेगा। यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आज की पूरी सबक में जो ये प्लकिंग की बात हुई है ये आप अपनी उन दोस्तों से ना करिएगा जो अभी कुरान की बाकायदा स्टूडेंट नहीं बनी। हम वो पिन पॉइंट पकड़ के जो दूसरे का मसला होता है जाके पेश करते हैं कभी नहीं आएंगे, ये हमारी इस तरह की चुकी उठी उठी तबलीग की वजह से बहुत सारे लोग आज कुरान की तरफ नहीं आ रहे। आपका भी दिल नहीं अभी माना तो करते रहिए, मैं नहीं कह रही कुछ आपको करने को ना छोड़ने को, इसलिए कि जब अल्लाह का और आपका मामला है, वक्त आएगा, तब्दीली आती है, चेंज आती है। और यहाँ एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप साथी सारे जो यहाँ रोज़ मिलते हैं, अब एक दूसरे को इस पर क्रिटिसाइज़ ना करें कि आपने की भी, आप करती हैं आप नहीं करती। ये इसलिए मैंने जुमला बोल दिया कि ये जुमले ही बाद में बड़े याद रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।